अपना कार्य इस संसार में किस तरह से करने आता हूं। आठवें अध्याय में फिर भगवान अक्षर ब्रह्म योग बताते हैं, अर्जुन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब होता है। सात सवाल पूछते हैं भगवान को कि हे पुरुषोत्तम, अर्थात परमात्मा को, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और वो मनुष्य शरीर में कैसे है, और सातवां प्रश्न, मृत्यु के समय आत्मसंयमी आपको कैसे जान सकते हैं। पहला सवाल, ब्रह्म क्या है, तो भगवान कहते जो अक्षय है, अविनाशी है और दिव्य तत्व है जिसका विधान कभी नहीं बदलता, वह ब्रह्म महतत्व है, जहां आत्माएं निवास करती, जहां परमात्मा भी निवास करते, उसका विधान कभी नहीं बदलता। ये मनुष्य सृष्टि की तरह परिवर्तनशील नहीं है, वो ब्रह्म महतत्व है। फिर अध्यात्म क्या है, तो भगवान कहते जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन द्वारा माया के अधिपत्य से निकलकर आत्मा के अधिपत्य में स्थित होकर उन्नति को प्राप्त करता है, वह है अध्यात्म। अध्यात्म माना, सिंपल शब्द में कहूं, अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति करना। अध्ययन कौन सा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान का अध्ययन करना, उससे माया के अधिपत्य में जो है हम उसमें से निकल जाते, उसके क्लचेज में से निकल जाते हैं और अपने आत्मा के अधिपत्य में, यानी आत्मा मालिक बन जाते हैं और धीरे धीरे आत्मा उन्नति प्राप्त कराता, वो अध्यात्म है। तीसरा, श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो कहा पंच महाभूतों से उत्पन्न देह के अभिमान या विकारों से परे रहकर जो सकारात्मक कर्म करता है वह सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है। तो चौथा, कहा भौतिक जगत क्या है, तो कहा पंच महातत्व से बना यह संसार जिसमें प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, यह भौतिक जगत है। इतने सटीक जवाब दिए हैं, एक एक लाइन में भगवान ने, एक एक श्लोक में उसके जवाब दिए हैं। फिर भगवान कहते हैं, भगवान से पूछते, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है, तो कहा देहधारियों में श्रेष्ठ देवता का शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं ही हूं। यानी देवता से परमात्मा अलग है, ये स्पष्ट हो गया। और फिर मृत्यु के समय आत्मसंयमी परमात्मा को कैसे जान सकते हैं, तो भगवान ने कहा जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया हो उसे अंत काल में वही स्मृति रहती है, इसलिए कहते अंत मते सुगते। और जो अंत काल में मेरी स्मृति में रहकर देह त्याग करता है वह मेरे सानिध्य में आ जाता है, इसलिए हे अर्जुन तुम हर समय मेरी स्मृति में रहकर युद्ध करो, यानी संघर्ष करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुर्जय शत्रु है, ये शत्रु परमात्मा स्मृति में रहने नहीं देंगे, उसी समय मायावी प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष उद्भव होने लगती है जीवन के अंदर। और फिर आठवें अध्याय में भगवान अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देता है कि हे अर्जुन मैं सर्वज्ञ हूं, अनादि हूं, सभी का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। ये भगवान के महावाक्य अपने स्वरूप के बारे में बताता है, सभी का नियंता हूं, अनादि हूं, सर्वज्ञ हूं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का आधार मूरत, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी हूं। स्पष्ट हो गया। और फिर भगवान अपने परमधाम का भी वर्णन करते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है जो सभी पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होती है और व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ है, अविनाशी है, सबसे परे है, वही मेरा परमधाम है जहां मैं विराजमान हूं। भगवान ने गीता में कभी नहीं कहा मैं सर्वव्यापी हूं, मैं परमधाम का निवासी हूं जो व्यक्त अव्यक्त से परे पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है, जो श्रेष्ठ है, अविनाशी और सबसे परे हैं, वही मेरा परम धाम है जहां मैं विराजमान हूं। तो खुद का भी परिचय दिया, कहां रहता है वो परिचय भी दिया, और फिर बताते हैं इस अध्याय के अंत में कि संसार से जाने के दो मार्ग है ना, प्रयाण करने के दो मार्ग, एक प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधकार का मार्ग। प्रकाश का मार्ग कौन सा है? जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वह ज्ञान युक्त, उसके क्वालिटीज क्या होंगी जो प्रकाश के मार्ग से जाएगा, तो वह ज्ञान युक्त कर्म मार्ग अर्थात जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती हो, जीवन को शुद्ध करने की अग्नि जलती हो, बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान चमकती हो, हृदय आकाश में आसक्ति के बादल न हो और भावनाओं का पूर्ण उजाला हो, वो प्रकाश के मार्ग से जाता है। ऐसे दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में रहता हो तब प्राण तन से निकले तो वह आत्मा श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है। उसके विपरीत जो है वो अंधकार के मार्ग से। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस मार्ग से जाना है, प्रकाश के मार्ग से जाना है या अंधकार के मार्ग से जाना है। जाना तो सबको है ना। जैसे दुनिया के अंदर दिखाते हैं कि एक मां बाप के दो बच्चे हो, एक बच्चा तूफानी है, दूसरा बच्चा आज्ञाकारी है। मां बाप दोनों बच्चों को कहते बच्चे तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। जो आज्ञाकारी है वो तो तुरंत उठता है, नहा धोकर तैयार होकर रेडी हो जाता है, लेकिन जो तूफानी है उसको मालूम है मैंने होमवर्क किया नहीं है, स्कूल में जाऊंगा तो भी मुझे पनिशमेंट मिलनी है, तो क्या कहता है आज मुझे स्कूल नहीं जाना है ना। मां बाप क्या कहेंगे, ठीक है नहीं जाओ, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक बार नहीं तो ये आदत पड़ गई तो हमेशा ऐसा ही करेगा। इसलिए मां बाप क्या करते, पहले उसको प्यार से समझाते हैं, बेटा देखो स्कूल तो जाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, या नहीं माना तो लालच भी देंगे, अच्छा तेरे को चॉकलेट देंगे, आइसक्रीम देंगे, जो उसको मनपसंद चीज होंगे वो ला करके देने का वायदा करते हैं। फिर भी अगर नहीं माना तो दो थप्पड़ मार कर घिसट कर उसको बाथरूम में ले जा करके नहलाएंगे धुलाएंगे रेडी करेंगे और स्कूल भेजेंगे। अब दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक हंसता हुआ जा रहा है, मुस्कुराता हुआ जा रहा, और दूसरा रोता हुआ जा रहा है। अब स्कूल जाने के बाद भी जो हंसता हुआ है वो तो सारा दिन उसकी भी प्राप्ति कर लेता है, स्कूल की भी प्राप्ति करता है, लेकिन जो रोता हुआ गया तो उसका पिता जाकर उसकी टीचर को कह देता है आज उसको मार पड़ी है, घर में थोड़ा आप ध्यान दे देना, है ना। तो वो टीचर भी क्लास में आने के बाद वो क्या करती है, सब बच्चों को, उसको कोई छेड़ेगा नहीं, बैठे रहने दो उसको एक कोने में, है ना। और वो बच्चा रोता है, रो रो करके थक करके सो जाता है, बेंच पर ही सिर रख के सो जाएगा। स्कूल छूटती है उसके बाद भी उसको मूड ही नहीं है, कुछ खेलता नहीं है, कुछ हंसता नहीं है, उसके फ्रेंड्स उसको मनाने का प्रयत्न करते हैं। दिन के अंत में जैसे शाम होती है तब जाकर के उसको कहीं मूड आता है, फिर खेलने के लिए जाता है, सब भूल जाता है। ठीक परमात्मा के भी दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है जो आज्ञाकारी है और दूसरे हैं जो थोड़े तूफानी है, है ना। भगवान दोनों को कहता है देखो अब जाने का टाइम आ गया है ना, इस संसार से अभी अधर्म का नाश, सब धर्म की स्थापना करनी है, कलयुग बदलकर सत्ययुग आना है, तो इसलिए अब जाना तो पड़ेगा, तभी सत्ययुग आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। इसलिए अभी आप देखते हैं दुनिया में होलसेल में मौत का प्रोग्राम शुरू हो गया है ना, अभी रिटेल में मौत नहीं होती, अब होलसेल में ज्वालामुखी फट रहा है, भूकंप हो रहा है, सुनामी हो रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, ये सब होलसेल में मौत के प्रोग्राम शुरू हो गए। अब जाना तो है सबको। जो आज्ञाकारी है वो अपने ज्ञान योग अभ्यास के द्वारा आत्म को शुद्ध करके तैयार हो जाते, लेकिन जो तूफानी है वो कहते हैं हमको जाना ही नहीं है ना, यहीं रहना है। अब भगवान पहले तो प्यार से समझाता है कि देखो बच्चे, सत्युगी दुनिया आनी है, स्वर्गीय दुनिया आनी है, उस स्वर्गीय दुनिया में तुम चलेंगे, ये छोड़ दो। वो सत्युगी दुनिया, स्वर्गीय दुनिया बहुत सुंदर है। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमारे लिए यही स्वर्ग है, मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है हमारे पास, हमें वो स्वर्ग चाहिए ही नहीं ना, यहां ही स्वर्ग जैसा जीवन है हमारे पास। भगवान पहले प्यार से समझाता है, लालच देकर के भी समझाता है, नहीं माना तो फिर क्या करेंगे, धर्मराज भी बन जाता है वो, और धर्मराज बन करके दो थप्पड़ मार करके अपने पापों का पापों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो धर्मराजपुरी की सजाओं को खा करके आत्मा को शुद्ध करके ही जाना है ऊपर, अशुद्ध आत्मा तो जा नहीं सकते। चाहे योग अभ्यास से शुद्ध होकर के जाओ, चाहे मार खा के शुद्ध होकर के जाओ, जाना तो सबको है। और जाते हैं, अब दोनों जाते हैं, जो हंसते हुए जाते हैं वो खुश रहते हैं, जैसे ही ऊपर जाके रेस्ट करके फ्रेश होकर के फिर जब सत्युगी दुनिया आती है तो पुनः इस संसार में आ जाते हैं। लेकिन जो रोते हुए गए उसका क्या होता है, जाकर के वहां सो जाते हैं, थक गए ना, रो रो करके थक गए तो सो गए। नीचे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, उनको मूड ही नहीं आता है नीचे आने का। और नीचे आने का मूड कब आता है, शाम को, शाम को कुछ मूड आता है, यानी कलयुग हो गया, सुबह है सतयुग, त्रेता युग दिन है, फिर द्वापर युग, और जैसे कलयुग आता है शाम का समय, रात्रि के समय में उसको मूड आता है, शाम हो गई द्वापर के बाद और रात्रि को मूड आता है तो कलयुग आ गया है। जब उसने स्वर्ग का सुख देखा ही नहीं, इसलिए कहते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है, क्योंकि वो स्वर्ग क्या होता है उसका अनुभव ही नहीं है उसको, इसलिए कहते। तभी तो इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहां से आई इतनी आत्माएं, जो है वो तो है ही है, यहां ही है, और जो ऊपर है शाम को मूड आता है तो नीचे उतरती, इसलिए कलयुग में पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगा। कहां से आई आत्माएं, तो ऊपर से आई, नीचे आई, क्योंकि ऊपर वो जो नीचे आना चाहते वो फ्रेंड्स उसको कहते अरे भाई चलो अभी तो चलो, फिर नहीं तो ये टाइम भी बीत जाएगा, कुछ तो अनुभव कर लेते हम, कलयुग का ही अनुभव कर लेते, तब जाकर के उसको मूड आता है अच्छा ठीक है चलो। क्योंकि देखा कि जो ऊपर से एक बार नीचे आए, एक भी ऊपर वापस आया नहीं, माना नीचे का खेल बढ़िया चल रहा है ना, कहा जाना है जब, इसलिए सारे अभी होलसेल में नीचे आ भी रहे हैं, तभी पॉपुलेशन इतनी बढ़ी है। लेकिन अब जाने का समय आएगा तो होलसेल में फिर सबको जाना भी है। तो ये है आठवें अध्याय का अंत, कल हम देखेंगे नौवें अध्याय, राज विद्या गुह्य योग और सीक्रेट्स, और गुह्य ते गुह्य बातें हैं कल की। आज कई सीक्रेट्स को आपने देखा, कल और सीक्रेट्स आप देखेंगे गीता की। राज विद्या गुह्य योग, बहुत गुह्य गोपनीय बातें हैं जो देखेंगे। अब यहीं समाप्त करते हैं, परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। योग अभ्यास करना चाहेंगे तो मैं फिर कमेंट्री के साथ योग कराएं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ स्नान करना तभी जरूरी हो जाता है जब कोई शौच में जाए तो स्नान करना जरूरी है, लैट्रिन में अगर जाए तो स्नान करना जरूरी है, नहीं तो अगर आप लैट्रिन में नहीं गए हैं तो फिर शुद्ध है तो फिर हाथ मुंह धो करके भी आप बैठ सकते हैं मेडिटेशन में सुबह अमृत वेला। तो इसीलिए जब मेडिटेशन दिशा के लिए तो कहीं पर भी गीता में कहा नहीं है, मना कोई भी दिशा में बैठ सकते, फिर भी कई लोग बताते हैं दुनिया के अंदर ये दिशा में बैठो वो दिशा में बैठो, खैर हम लोग तो कहते हैं कि कोई भी दिशा में बैठ सकते हैं। योग के लिए मेन बात है कि अपने मन को एकाग्र करना है, और विधि अगर यथार्थ है तो कोई भी दिशा में बैठते हैं तो भी उसका ये। बाकी यहाँ कई लोग अगर वीक माइंड के हैं और इस बात को दिल में ले लेते हैं कि भाई यही दिशा में हमको बैठना है, तो उसके लिए हम मना भी नहीं करते हैं। जिस रीति से भी बैठना चाहे, लेकिन जो विधि गीता में बताई है कि दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठ करके योग करें। आज तो आप सभी कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए हम मना नहीं करते हैं कि भाई आप आसन लगा करके ही बैठो, लेकिन कम से कम फिर भी पीठ सीधी हो, पीठ सीधी हो। नहीं, भगवान ने जो गीता में योग सिखाया, आंख खुली रखना है, क्योंकि तीनों द्वार अगर बंद हो जाएंगे तो फिर शक्ति मिलेगी कहां से। छवि को रखने की जरूरत नहीं है, निराकार जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, उस दिव्य स्वरूप पर अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है? हाँ जी। हाँ, मन ऐसा है क्योंकि हमने कभी एक खुली आंख से अभ्यास नहीं किया ना, इसलिए थोड़ा शुरू में दिक्कत लगेगी, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे तो नेचुरल हो जाएगा। वैसे ध्यान को खुली आंख से ही किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की याद में खो जाता है, बैठे बैठे खो जाए कोई अपने प्रिय व्यक्ति की, तो आंखें खुली होती है। खो गया, पास में से कोई गुजर गया और उसको पूछा जाए यहां से कोई गया, तो क्या कहते हैं? मालूम नहीं। आंखें खुली है, यहीं बैठे हैं, दिखाई नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहां था? किसकी यादों में खोया हुआ था? तो ध्यान किसको कहा गया? कि आंखें खुली है, बैठे हैं, लेकिन उस बार अगर व्यक्ति की याद में ध्यान लग सकता है तो ईश्वर की याद में क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि व्यक्ति के साथ में शायद प्यार इतना घनिष्ठ है, इसलिए ईश्वर के साथ इतना प्यार ही नहीं है, इसलिए आंखों को बंद करके वो स्वरूप को लाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कर्म योगी बनना है, आंख बंद करके ही अभ्यास होगा तो कर्म योगी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि फिर आंख बंद, और कर्म तो आंख बंद करके नहीं करेंगे आप। तो इसीलिए खुली आंख से अभ्यास होगा तो कर्म योगी बनना भी नेचुरल हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं, और गीता में जैसे बताया हुआ है, आप दिलवाड़ा में जाएंगे तो आप देखेंगे 108 मूर्तियां हैं, सबकी आंखें खुली है, किसी की आंखें बंद नहीं है। योग की सही विधि ही खुली आंख से है ना, और इसीलिए कर्म योगी तभी हम नेचुरल रूप से बन सकते हैं। तो अभी हम सभी जो अभ्यास करेंगे ध्यान करने का, भले आपको बीच बीच में आदत है आंखों को बंद करना चाहे कर सकते, लेकिन फिर भी बीच बीच में खोल लेना, तभी दर्शन भी कर पाएंगे, नहीं तो दर्शन होगा नहीं, है ना? हाँ जी। अंतरचक्षु की बात है, लेकिन यहाँ, हाँ सही बात है, आपने सही कहा, अंतरचक्षु और बाह्य चक्षु दोनों को ही खुला रखना है। बराबर है, लेकिन मैंने यही कहा कि अगर आपको कर्म योगी बनना है तो खुली आंख से ही अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने छठे अध्याय में ये बताया कि शांत अंतकरण हो, योगी को भय रहित पवित्र एकांत स्थान में बैठकर तो इधर उधर जाने की बात नहीं होती है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये अभ्यास की ही बात है, एक बार अभ्यास आ जाएगा तो खुली आंखों बंद आंखों कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लोगों ने इसीलिए कई प्रकार की विधि अपनाई कि भाई श्वासों पर केंद्रित करो, ये सब विधियां अलग अलग है, लेकिन सब में जाओ नहीं। भगवान ने जो गीता में बताया वही विधि को अपनाओ, वही यथार्थ है। भगवान वाच है, भगवान ने आंखें बंद करने के लिए कौन से श्लोक में कहा मुझे तो मालूम नहीं। हाँ, अर्ध नेत्र ही खुले बताए। ऐसा है कि आपने कौन सा गीता के अंदर पढ़ा है मुझे पता नहीं है, मैंने 20 गीता का अध्ययन किया है और हर गीता के अंदर मैंने यही पढ़ा छठे अध्याय में कि दृष्टि को खुला रखो। आप पुनः पढ़ लीजिए, ध्यान की सही विधि यह है। आप भले कहे कि आंखों को बंद करते तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये ध्यान की सही विधि नहीं है। लेकिन क्योंकि किसी ने आज दिन तक हमें गाइड नहीं किया, इसीलिए हम बंद आंख के अभ्यासी हो गए। लेकिन आप ये मत समझना कि बंद आंख से मन एकाग्र हो जाता है, नहीं। बंद आंख से आपका कंट्रोल मन के ऊपर नहीं रहता है, सारी दुनिया घूम के आ सकता है मन। खुली आंख से मन जाता है तो पता तो चलता है कि गया, बंद आंख से आपको पता भी नहीं चलता है कि मन कहां चला गया। कभी कभी नींद की अवस्था में चला जाता तो भी मालूम नहीं पड़ता है। लोग निद्रा योग कर लेते हैं, राजयोग क्या करते हैं। भावार्थ ये है कि अगर आपकी आंखें खुली है तो मन जब जाता है ना आपको पता चलता है गया, दिखाई देता है। बंद आंख से आपका मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वो सारी दुनिया चक्कर लगा के आ जाता, आपको पता भी, आपको लगता है मेरा मन कहीं नहीं गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सही बात है, बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे, आप बाद में हमसे बात करना, क्योंकि ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम सभी अभी बैठेंगे ध्यान की स्थिति के लिए, नहीं तो टाइम चला जाएगा। फिर तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं, अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। ज्योति पुंज के रूप में ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं, मालिक हूं। ये कर्मेंद्रिय से भिन्न हूं, धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर परमात्मा के सानिध्य में। पंचतत्व की दुनिया से दूर सूर्य सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, अखंड ज्योतिर्मय दिव्य लोक में, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है, जो अक्षय है, ब्रह्म महतत्व है, अंतर चक्षु से मैं स्वयं को ज्योति पुंज के रूप में उस दिव्य लोक में देख रही हूं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूं। मेरा अनादि स्वरूप सतोगुणी है। मैं आत्मा अपने शुद्ध पवित्र स्वरूप में स्थित हूं। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश की आभा फैली हुई है। उस प्रकाश के प्रभा मंडल में स्वयं को देख रही हूं। कितना दिव्य स्वरूप है मेरा। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन है। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं। यही मेरी वास्तविकता है। यही मेरा अनादि स्वरूप है। धीरे धीरे मैं स्वयं को पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूं। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी प्रकाश पुंज है, दिव्य है, तेजोमय है, प्रकाश स्वरूप है। इस जगत का नियंता है। सर्वज्ञ है। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप अशरीरी है। परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप पर अपने ध्यान को एकाग्र करती हूं और सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं उस शक्ति की किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूं। और धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त बनती जा रही हूं। परमात्म शक्ति से स्वयं को भरपूर कर रही हूं। परमात्मा की याद में मैं अपने ध्यान को एकाग्र करती हूं। और उस शक्ति को स्वयं में प्रवाहित होने देती हूं। समाते जाओ, खो जाओ। कितना सुंदर अनुभव है ये, धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में प्रकृति की मध्य में एकाग्र करती हूं। और सर्व शक्तियों के किरणों को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूं। और मुझे हर कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में परमात्म शक्ति को कर्मेंद्रिय द्वारा प्रवाहित करना है। ओम शांति, 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 ओम शांति। ओम शांति।